الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف، صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھ لو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى، عدد ما تحب وترضى. اس وقت جو حالات ہے اس کا ایک ایمرجنسی علاج، اس کے بارے میں حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بہت تفصیل سے آپ کے سامنے بیان فرمایا. اور جو ان حالات کا پرمننٹ علاج ہے کہ ہم مسلمانوں کو ہماری شریعت، ہمارا دین، ہمارا مسلم پرسنل لاء، اس کو اچھی طرح سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اپنی زندگی میں اپنانے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ یہ کام ہم کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت جو مسئلے ہماری گورنمنٹ نے سپریم کورٹ میں ایفیڈیوٹ کے ذریعے اٹھائے ہیں، اس میں ایک طلاق کا مسئلہ ہے. طلاق کے متعلق میں آپ حضرات سے چند باتیں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں گھروں میں جو طلاق ہوتی ہے تو اس طلاق کے اندر بہت سارے گناہ وجود میں آتے ہیں. بہت سارے گناہ اس طلاق کی وجہ سے ہمارے یہاں ہو رہے ہیں. ان گناہوں کو ہمیں اپنے سماج میں سے، معاشرے میں سے ختم کرنا ہے. سب سے پہلا گناہ جو طلاق کے عنوان اور ٹائٹل سے وجود میں آتا ہے وہ یہ کہ بھائی ہسبینڈ وائف ہے، میاں بیوی ہے، ایک گھر میں رہتے ہیں، نرم گرم سوکھی لیلی چلتی ہے، کبھی اگر گھر کے اندر کوئی پرابلم آ گیا، کوئی اونچ نیچ ہو گئی، بولا چالی ہو گئی، تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ ہم فوراً عورت کو طلاق دے ڈالیں. ہرگز اس کا یہ علاج نہیں ہے. آج ہم لوگوں کی سب سے بڑی کوتاہی یہ ہے کہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی غور و فکر کے جلدی جلدی فٹافٹ لوگ طلاق دے ڈالتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فضول، جلد بازی کرنا، جلدی کرنا یہ شیطان کا عمل ہے. یہ جو بغیر سوچے، آج تو ہم لوگ شادی کرنا ہوتا ہے، بہت دکھ کی بات میں کہتا ہوں، تو شادی کے لیے منڈپ کون سا اچھا، ہال کون سا اچھا، باورچی کون سا اچھا، کھانا کون سا اچھا، شادی کے کارڈ چھپوانے کے لیے پریس کون سا اچھا اور سستا، ساری فکر کریں گے. اور فکر نہیں کرتے تو کیا نہیں کرتے کہ میں شوہر بن رہا ہوں. آج تک کنوارا تھا، اب میں شوہر بن رہا ہوں تو مجھے اپنی بیوی کا حق کیسے ادا کرنا، اس کو کوئی سیکھتا ہی نہیں ہے، اس کو کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے. कि एक शोहर होने के नाते मेरी क्या जिम्मेदारी है, मेरी क्या जवाबदारी बनती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इसको वो सीख लेवे तो इंशाल्लाह कभी तलाक देने की नौबत नहीं आएगी। आप समझिए इसको। पहली चीज, हर शोहर के वास्ते कि वो अपनी बीवी के साथ अच्छे अखलाक से पेश आवे। भाई औरत जात है, कुछ बोल देवे तो बर्दाश्त कर लेने का, सुन लेने का, नरमी से समझा देने का, गर्मी से नहीं नरमी से। ऐसे भी बिचारी पूरा दिन बिचारी किचन में गर्मी में रहती है, फिर ऊपर से तुम्हारी गर्मी, तो वो जाएगी कहां। इसीलिए नरमी से समझाओ, मोहब्बत से समझा दो, तो इंशाल्लाह झगड़े की नौबत नहीं आएगी। नंबर दो, गैरत में एतदाल। गैरत में एतदाल का मतलब क्या? औरत के ऊपर बदगुमानी नहीं करते रहने का। बहुत सारे शोहर होते हैं अपनी बीवी पर हमेशा बदगुमानी करते हैं। अल्लाह ने कुरान में मना फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न। ए ईमान वालों, बहुत ज्यादा गुमान से बचो। आज हम लोग बीवियों पर शक करते रहते, वहम करते रहते। याद रखो, ये शक, ये वहम, ये बदगुमानी तुम्हारी शादी वाली जिंदगी को बर्बाद करने का जरिया बन जाए, बदगुमानी नहीं करने की। और दूसरी बात उसमें ये भी याद रखो कि बिल्कुल गाफिल भी नहीं रहने का, बदगुमानी भी नहीं, बिल्कुल गफलत में भी नहीं रहने का, जरा नजर और ध्यान भी रखने का, इस पर किसके फोन आते हैं और वो किसके साथ बात करे वो भी ध्यान रखने का। गफलत भी नहीं, बदगुमानी भी नहीं, बीच बीच के अंदर रहने का। और मैं तो एक सीधी सीधी बात कहता हूं कि हमारी दीनी बहनों को तो एक सीधा सादा मोबाइल दे देने का, इनको जो है बड़ी स्क्रीन वाला मोबाइल और उसमें व्हाट्सएप और इंटरनेट कनेक्शन की क्या जरूरत है। एक औरत को अगर बात करनी है तो शोहर से, अपने भाई से, अपने बाप से, अपनी माँ से, इतनों से तो बात करनी होती है। ये चार पांच कॉन्टेक्ट के वास्ते बड़े बड़े मोबाइल और उसमें इंटरनेट कनेक्शन, ये सब की जरूरत क्या? इसी की वजह से बिगाड़ आता है। इसलिए याद रख लो कि एतदाल, न्यूट्रल रहो, कि बीवी के ऊपर बदगुमानी भी ज्यादा नहीं करने की और उसके बारे में गफलत में भी ज्यादा नहीं रहने का। आगे खर्चा भी एतदाल से, दरमियानी शक्ल में देने का, इतना ज्यादा भी नहीं कि वो जो है अपने आप को पूरी राहत कॉलोनी की रानी समझे। इतना ज्यादा खर्चा भी नहीं देने का कि पूरे राहत की टाटा बिरला मैं ही हूं, इतने पैसे भी नहीं देने के। और इतना भी कंजूस मक्खी चूस नहीं बनने का कि वो ये समझे कि मेरा शोहर तो फकीर जैसा है। इतना कंजूस मक्खी चूस भी नहीं बनने का। आजकल की महंगवारी सामने है, उसको सामने रख करके बीच बीच का खर्चा देने का, फजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। आज सबसे बड़ी बला फजूल खर्ची की है, सबसे बड़ी बला इस वक्त की अगर कोई है तो फजूल खर्ची, बेकार के खर्चे। आज आदत बन गई कि भाई शनि रवि तो घर में खाना पकाना गुनाहे कबीरा, शनि रवि को डुम्मस घूमने जाना फर्जे ऐन, ये हमने समझ लिया। मेरे भाइयों, ये कोई शरीयत की बात नहीं है। रहो घर के अंदर, रखो बीवी को घर के अंदर, ठीक है कभी कभार पर्दे के एहतमाम के साथ बाहर ले जाके खाना खिला दिया, कभी कभार। मैं तो यूं कहता हूं, मशवरा देता हूं लोगों को कि भाई एक वैकेशन में 15,000-20,000-10,000 का खर्चा करके आप लोग करीब में कहीं घूमने गए, दूसरे साल वैकेशन में 10-15,000 का खर्चा करके कहीं घूमने गए, ये दो चार वैकेशन का खर्चा बचा लो तो इंशाल्लाह एक उम्रे में जाना आसान हो जाएगा। कितना अच्छा तरीका, 50,000 का उम्रा दो तीन करीब के टूर कैंसल करो और उम्रे में ले जाओ बीवी को, कितना अच्छा तरीका है। तो फजूल खर्ची भी नहीं और जो है ज्यादा इसराफ भी नहीं। और बहुत अहम जिम्मेदारी शोहरों की कि अपनी बीवियों को मसाइल सिखाओ, शरीयत के अहकाम सिखाओ। आज हमारी बीवियां एक दो तीन चार बच्चों की मां बन जाती है लेकिन बिचारी को मसले ही मालूम नहीं। एक औरत का मसला आया कि भाई बच्चा हुआ तो 40 दिन पर जब वो पाक होगी तब नमाज चालू करेगी। मैंने कहा ये मसला तुम कहां से लाए कि 40 दिन पर पाक होगी तब नमाज चालू करेगी। मसला तो ऐसा है कि एक दिन में पाक हो गई तो दूसरे दिन नमाज चालू करे। आज बच्चा पैदा हुआ कल पाक हो गई कल नमाज चालू कर दे। 10 दिन में पाक हो गई 10 दिन में नमाज चालू कर दे। इसमें कोई 40 दिन तक जाने की जरूरत नहीं। जितने दिन में खून बंद हुआ औरत पाक हो गई नमाज चालू कर दे रहे बच्चा पैदा होने के बाद। बहुत से मसले मसाइल आज तक हमने अपनी औरतों को नहीं सिखाए। हैस के मसले, निफास के मसले, नमाज के मसले वो सिखाओ। बताओ आज तक हमने कभी अपनी बीवी को बिठा करके कहा बेगम जरा तेरी अत्तहियात मुझे सुना, दुआए कुनूत सुना, सना सुना दे, ज्यादा नहीं तो अलम तरह से लेकर के कुलऊजु बिरब्बिन्नास तक 10 सूरत और 11वीं सूरत अलहम्दो शरीफ सिखा दे। कितने शोहर ने आज तक ये काम किया बताओ। ये शरीयत के मसाइल, शरीयत के अहकाम, फराइज वाजिबात, ये चीजें सिखाओ अपनी बीवियों को, ये बहुत अहम जरूरी चीजें हैं। और गुनाह की, बिदआत की, रुसुमात की और हराम बातों से उनको रोको, ये जरूरी है शोहर के ऊपर। याद रखो हमारी बीवी गुनाह करे, हराम काम करे, बेपर्दा घर से बाहर निकले, फिल्म देखे और अधूरे कपड़े पहने और शोहर उसको देखा करे कुछ न बोले, तो उस शोहर की अल्लाह के यहां पूछ होगी। उस शोहर को जवाब देना पड़ेगा कि तेरी बीवी अधूरे कपड़े के साथ निकलती थी, बगैर दुपट्टे के निकलती थी, बगैर पर्दे के निकलती थी, तू शोहर था, देखता था, फिर भी तूने तेरी बीवी को नहीं रोका। अल्लाह के यहां जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए अपनी बीवियों को शरीयत के अहकाम और मसाइल सिखाओ। और मकान, कपड़ा, खाना जो शोहर की बुनियादी जिम्मेदारी है वो अपनी बीवी को बराबर बराबर पहुंचावे। जरूरत के मुताबिक जिमा करे और अजल करना हो तो बीवी की इजाजत लेकर के देवे। और अपने महारिम वालिदैन के पास, करीबी रिश्तेदार के पास मिलने भी जाने देवे। हमारे एक दोस्त थे, है अभी भी, उनकी शादी हुई चंद दिन में तलाक हो गई, फिर दूसरी शादी हुई तलाक हो गई, तीसरी शादी हुई तलाक हो गई। अब मिल भी जाती थी मालदार घर का लड़का। मैंने कहा कि इतनी जल्दी जल्दी तलाक पड़ती है, वजह क्या है? तो कुछ जवाब नहीं मिलता। बहुत डीप में गए तब अंदर से धीरे से जवाब आया कि शादी करने के बाद अपनी बीवी के साथ ऐसा रहता है, ऐसा रहता है कि कभी उसको माँ बाप के घर जाने ही नहीं देता है, कभी जाने ही नहीं देता है। अरे कम से कम हफ्ते में एक दिन माँ बाप से मुलाकात वो तो बीवी को करने देना चाहिए। भाई आ जावे उसके साथ मुलाकात करने देवे, ये क्या सबसे काट देवे, तेरी माँ को नहीं मिलने का, बाप को नहीं मिलने का, भाई को नहीं मिलने का, ये कौन सी शरीयत है? ये तो जुल्म है शोहर की तरफ से। उसके माँ बाप के साथ मुलाकात करने दो, दूसरे महरम रिश्तेदार के साथ उसकी मुलाकात करने दो। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, मियां बीवी के बेडरूम की जो बातें होती है वो किसी के सामने जाहिर मत करो। आज फैशन बन रही है कि मियां बीवी की पर्सनल बातें अपने दोस्तों के सामने लोग बयान करते हैं, औरत अपनी सहेलियों को बताती है, मर्द अपने दोस्तों को बताते हैं। ये बहुत दयूसीपन की बात है, दयूस है वो आदमी, कि बेडरूम की बातें हस्बैंड वाइफ की पर्सनल बातें वो लोग लोगों के सामने जाकर के बयान करते हैं, बहुत बड़ी गलत और गुनाह की बात है। मियां बीवी की पर्सनल बात, बेडरूम के अंदर की बात, वो किसी के सामने जाहिर मत करो। और तोबा अस्तगफिरुल्लाह। जब शादी के दिन दुल्हन को तैयार किया जाता है तो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर उसका फोटो लोग लगाते हैं। ये तुम्हारी दुल्हन तुम्हारे लिए है कि सारी दुनिया को तमाशा दिखाने के लिए, समझ में नहीं आता। ये कितना बड़ा गुनाह, कितनी बड़ी बेपर्दगी, बेहयाई, बेशर्मी की चीज कि हमारे घर में शादी हो रही है, हम अपनी दुल्हन, अपनी होने वाली बीवी, और बाप है तो अपनी बेटी जो ससुराल भेज रहा है उसका फोटो, उसके सारी चीजें फेसबुक पर रख रहे और उसको इंटरनेट पर रखते, व्हाट्सएप पर रखते कि सब लोग देखे। ये बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ी बुराई की बात है। अल्लाह सुबहानहु व तआला ने शोहरों को हुक्म दिया, वआशिरुहुन्न बिलमारूफ, औरतों के साथ अच्छी तरीके से जिंदगी गुजारो। ये औरतों के साथ अच्छी जिंदगी गुजारने के ऊपर इंशाल्लाह अल्लाह ताला के यहाँ बड़ा अजर और सवाब मिलेगा। देखो मेरे भाइयों, औरत कितनी भी बुरी हो, कितनी भी बुरी हो, हमारे एक उस्ताद थे हजरत मौलाना रशीद अहमद बुजुर्ग सिमलकी रहमतुल्लाह अलैह, एक बहुत अच्छी मिसाल देते थे कि जो घड़ी बंद हो जाती है ना, बिगड़ जाती है, वो भी 24 घंटे में दो मर्तबा सही टाइम बतलाती है। बिगड़ी हुई घड़ी 24 घंटे में दो मर्तबा सही टाइम बतलाती है। तो क्या ये हमारी दीनी बहनें, हमारी औरतें उस बंद घड़ी से भी गई गुजरी हो गई कि 24 घंटे में दो काम ऐसा नहीं करेगी जो आपको पसंद का होवे, उससे भी गई गुजरी हो गई ये हमारी दीनी बहनें? हरगिज नहीं। बात दरअसल क्या है कि हमने इन औरतों को इस बात का पाबंद बनाना चाहा कि मैं जैसे चाहूं वैसी मेरी बीवी हो जाए, मैं जैसे चाहूं ऐसी मेरी बीवी हो जाए। बस ये पॉइंट गलत है। कोई शोहर ये नहीं सोचे कि मैं जैसे चाहता हूं वैसी मेरी बीवी बन जावे। ये चाहो कि अल्लाह जैसे चाहते हैं ऐसी मेरी बीवी बन जावे, मैं भी अल्लाह चाहे ऐसा बन जाऊं और मेरी बीवी भी अल्लाह जैसे चाहे वैसी बन जावे। बस ये है असल पॉइंट की बात। अगर हम उसको अपनी मर्जी का बनाने जाएंगे, ये है झगड़े फितने फसाद की चीज। और अल्लाह चाहे ऐसा बनाना चाहोगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज कभी झगड़ा और फितना नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी बीवियों का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए, उनके साथ हुस्ने सुलूक के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह इसके मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो कभी भी तलाक की नौबत माशरे के अंदर आएगी नहीं। अभी इन्होंने पर्ची भेजी कि औरतों की जिम्मेदारी बताई है, तो मैंने इस सिलसिले में अभी इसी जुमा को बयान किया है। जिनको चाहिए व्हाट्सएप नंबर लिखवा के जाए, उन पर भेज देंगे। इतना वक्त नहीं है कि उनकी जिम्मेदारियों के ऊपर मैं इस वक्त पर बयान करूं। इसी जुमा का ताज़ा बयान है, वो आपको इंशाल्लाह भेज देंगे। अल्लाह सुबहानहु व ताला आज की इस मजलिस को बे इंतहा कबूल फरमावे, अपनी रजा और खुशनुदी का जरिया बनावे। दीनी बहनों को बस एक ही हदीस अर्ज कर देता हूँ, उसमें वो सारी बातें समझ ले। हदीस के अल्फाज कुछ इस तरह है कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अरबस्तान से निकल करके दुनिया के दूसरे मुल्कों में गए, अलग अलग मकसद से। एक बड़ा मकसद था दुनिया के दूसरे बादशाहों के पास दीन की दावत पहुंचाने के लिए गए। तो वहां जाकर के देखा कि ईसाइयों के यहाँ, पारसियों के यहाँ जो बादशाह होता है, लोग उसके सामने सिजदा करते हैं। जब बादशाह के सामने आते हैं तो आके सिजदा करते हैं, फिर बादशाह के साथ बात करते हैं। सहाबा ने ये मंजर देखा, तो मंजर देख करके जब आए तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज किया कि हुजूर, वो दुनिया के बादशाह है, उनके सामने लोग सजदा करते हैं, انت احق ان یسجد لک, آپ زیادہ حقدار ہے کہ ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں. صحابہ حضور کو کہتے کہ آپ ہم کو اجازت دو ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں. وہ اگر دنیا کے بادشاہ ہے تو آپ تو دنیا اور آخرت دونوں جہان کے بادشاہ ہے, ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں, اس کی اجازت دیجئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ ہماری مسلمان بہنوں کو سنانا چاہتا ہوں, وہ سن لے ایک حدیث کو. فرمایا لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لاملت المرأة ان تسجد لزوجها او كما قال عليه الصلاة والسلام. صحابہ اجازت لینے گئے تھے کہ حضور کے سامنے سجدہ کرے, تو حضرت نبی کریم کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میری شریعت میں میرے دین میں اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز نہیں ہے. اگر اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے. کتنی اہم بات حضور نے ارشاد فرمائی. تو اسی سے ہماری دینی بہنوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے. سب سے بڑی ٹپ میں بتلا دو دینی بہنوں کو, شوہر کے سامنے اپنی زبان کو بند رکھے, یعنی شوہر کے غصے کے وقت کے اوپر, تو انشاءاللہ تمہاری زندگی مزے سے گزر جائے گی. حضرت مولانا ابرار صاحب دلیوی رحمت اللہ علیہ کے مواعظ میں ایک واقعہ لکھا ہے, میں نے دنیا کے کئی ملکوں میں اپنی دینی بہنوں کو سنایا, سب کو فائدہ ہوا. یہاں بھی اپنی دینی بہنوں کو سنا دیتا ہوں, انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا اور حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے اس فائدے کے یقینی ہونے کا. وہ یہ کہ ایک جگہ کے اوپر ایک بڑے عامل صاحب آئے, یعنی تعویذ بنانے والے باپو. تو آپ جا کر کے دیکھ لو, عجیب بلا ہے کہ جہاں کوئی باپو آیا وہاں سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہوتی ہے, مرد کم دکھیں گے عورتوں کی تعداد زیادہ نظر آئے گی باپوؤں کے یہاں. حالانکہ ان باپوؤں پر بھی کوئی اعتماد کرنے جیسا ہوتا نہیں ہے, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو وہ کوئی باپو آئے تعویذ بنانے والے, تو عورتیں گئی, اس میں ایک عورت گئی اور جا کر کے عامل صاحب کو کہنے لگی, عامل صاحب میرا اور میرے شوہر کا شادی کے بعد بہت بنتا تھا, بہت محبت تھی ہم دونوں میں, کسی کو ہماری محبت پہ حسد آیا تو کسی نے ہم کو بارکا کروا دیا ہے, جادو کروا دیا ہے, کچھ کھلا پلا دیا ہے, تو کوئی تعویذ بنا دو کہ وہ جادو اور بارکا اثر ختم ہو جائے. کہ تجھے کس نے کہا کہ بارکا ہو گیا جادو ہو گیا؟ تو کہا کہ روزانہ ایک فکس ٹائم پر ہم دونوں میں جھگڑا ہوتا ہے, ایک ٹائم پر فکس ٹائم پر جھگڑا ہوتا ہے, چوکس کسی نے کچھ بارکا کروا دیا ہے. تو پوچھا کون سے ٹائم پر؟ تو اس نے مغرب کی نماز کے بعد کا ٹائم بتایا. اب وہ عامل صاحب تھے کامل سمجھدار, وہ سمجھ گئے کہ شوہر بیچارہ دکان سے اسی ٹائم پر گھر آتا ہے اور پورا دن کا دکان کا تھکا ہارا اب یہ گھر میں آیا نہیں کہ بیوی نے اپنی ریکارڈر چالو کر دی, زبان چالو کر دی, تمہاری ماں یوں کرتی ہے, تمہارا باپ یہ کرتا ہے, تمہارا بھائی یہ کرتا ہے, اور گھر میں یوں ہوا وہ ہوا. اب وہ بیچارہ کھا دن کا دکان کا تھکا ہارا اور گھر میں آتی بیوی نے ریکارڈر چالو کر دیا, تو شوہر کو بھی غصہ آوے اس کا بھی پتا جاوے, تو دونوں میں جھگڑا ہو. یہ تھی اس جھگڑے کی بنیاد. تو عامل صاحب نے کیا کہا, کانچ کی بوتل میں پانی لے آؤ, میں دم کر دیتا, بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. وہ عورت بوتل لے آئی, پانی میں پھونک مار دی. تو عامل صاحب نے کیا کہا, دیکھو ایک فکس ٹائم پر جھگڑا ہوتا ہے نا, اسی ٹائم پر کوئی جادو کرتا ہے تمہارے اوپر. تو دیکھو تم دیکھو باری میں سے کہ شوہر آیا گاڑی پارک کر رہا ہے, تو یہ بوتل میں سے ایک گھونٹ پانی منہ میں لے لینے کا, اور منہ میں لینے کے بعد ایک گھنٹہ پانی منہ میں رہنا چاہیے, باہر کلی بھی نہیں کرنے کی, اندر اتارنے کا بھی نہیں. اگر جو کلی کی تو گھر سے باہر, अने अंदर जो उतारा तो इससे डेंजर, इसलिए जो है मुंह में रखने का एक घंटा। उस औरत ने कहा जरूर। अब उसने वो बोतल ले ली और जैसे देखा खिड़की में से के शोहर आया तो कहा हजरत ने कहा था आमिल साहब ने कि पानी मुंह, तो उसने पानी मुंह में ले लिया। अब मुंह में ले लिया तो आमिल साहब ने कहा था कि एक घंटे तक बाहर भी नहीं अंदर भी नहीं, मुंह में रखने का। अब जाहिर है कि पानी मुंह में रहेगा तो बोल नहीं सकती, और बोल नहीं सकेगी एकदम चुप। तो शोहर घर में आया तो आज देखा कि रिकॉर्डर चलती ही नहीं है। अब जो है हुआ ये कि वो आया घर में, ये चुपचाप खाना तैयार कर रही है, दस्तरखान बिछा रही है, पानी लगा रही है। तो शोहर भी सोचता है कि एकदम अचानक सुधारा कैसे हो गया, वो भी हैरान परेशान, उसको भी कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन बहुत देर हो गई वो कुछ बोलती नहीं है। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, वो सात दिन का पानी का बोतल था। आठवें दिन आमिल साहब ने कहा था फिर नया पानी दम करवा जाना। अब वो सातवें दिन पूरा होके आठवें दिन गई तो मिठाई का बॉक्स आमिल साहब के लिए लेके गई। वो पुरानी बात समझे, हम औरत को तलाक दे देते हैं, ये पहला गुनाह है। अगर हम लोग घर में कोई बात होवे और बहुत सोच समझ के उसको हल करे तो इंशाल्लाह तलाक देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा गुनाह ये है कि घर में जो मसले होते हैं उसकी इस्लाह करने के लिए, उसको सुधारने के लिए कुरान में अल्लाह ताला ने बहुत सारे इलाज बतलाए, उन इलाज को हम अपनाते नहीं, सुलह कराने की कोशिश नहीं करते। कुरान की एक आयत में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि घर में कोई झगड़ा हो तो नसीहत करो, समझाओ। दूसरे नंबर के ऊपर बिस्तर अलग करो। तीसरे नंबर पर नरमी से, आहिस्ता आहिस्ता, संजीदगी से जरा सा उसके ऊपर हाथ चला। एक चौथा इलाज बतलाया, दोनों फैमिली के जिम्मेदार लोग बैठ करके दोनों के मसले को सुलझावे। ये सुधारने के जो तरीके हैं, सुलह कराने के जो तरीके हैं, उसको हम लोग अपनाते नहीं। एक दूसरा अहम गुना तलाक में वजूद में आता है। तीसरी चीज, मशवरा नहीं करते। तलाक के बाद तो लोग मुफ्तियों को ढूंढने निकलते हैं कि मुफ्ती साहब कोई रास्ता कर दो कि कुछ हमारा जो है मसला सुधर जावे। उस पर एक लतीफा यानी जॉक्स मुझे याद आया कि घर में एक औरत ने दूध गर्म करने में गफलत हो गई तो दूध फट गया। तो औरत बिचारी जोर से बोलती है दूध फट गया, दूध फट गया। तो घर में छोटा सा बच्चा था, वो धीरे से माँ को कहता है मम्मी मेरे अब्बा यानी आपके शोहर हो गए। अब आमिर लोग मिठाई के बॉक्स नहीं लेते, अब तो वो कवर लेते हैं। तो वो लेकर के गई, तो जो गई तो उसने कहा हजरत 70% आपके पानी से फायदा हो गया, आपने क्या दम करके दिया कि 70% झगड़े खत्म हो गए, अब जरा से बाकी है। आमिर साहब ने कहा एक बोतल और ले जाओ, 100% फायदा हो जाएगा। बात दरअसल ये थी, न कोई बार का असर था, न कोई जिन्नात और जादू। मैं कहा करता हूं कि वो जिन्नात भी जो कोई नवरे थोड़े ही बैठे हैं कि सबको लगे फिरे, और जो है वो जादू भी कोई फारिक थोड़े ही है कि हर एक को होता रहे। एक बात मैं लोगों को कहा करता हूं कि जब घर के अंदर का माहौल खराब होता है तो बाहर का असर होता है, और अंदर का माहौल बनता है तो बाहर का असर कभी नहीं हुआ करता। अगर घरों में नमाज हो, तिलावत हो, पर्दा हो, तालीम हो, जिक्र हो, तस्बीह हो, पर्दे का एहतमाम हो, खुदा पाक की कसम कभी बाहर का असर नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग घरों में कोई अंदर का माहौल बनाते नहीं तो बाहर का असर होता है। तो ये क्या गुण था जो हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। मिश्कात शरीफ में रिवायत है, जब मैं मिस्र गया था काहिरा में, हजरत उकबा बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हो के मजार पर गया, आंख में आंसू आ गए और मैंने कहा ये वो शख्स है जिसने उम्मत को एक अजीम एहसान किया कि हुजूर को सवाल किया, मन नजातु या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल नजात कैसे मिलेगी मुसीबतों से तकलीफों से दुनिया और आखिरत की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में पहला जुमला फरमाया, अमलिक अलैक लिसानका, अपनी जबान को काबू में रखो। अगर हमारी दीनी बहनें जबान को काबू में रख लेवे तो इंशाअल्लाह अजीज फैमिली में प्रॉब्लम नहीं आएंगे और तलाक की नौबत नहीं आएगी। अल्लाह ताला हमको अच्छा शौहर बनने की तौफीक अता फरमाए, हमारी घर की औरतों को अच्छी बीवी बनकर के जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, तो इंशाअल्लाह तलाक की नौबत हरगिज आएगी नहीं। हमारे हजरत मुफ्ती साहब आजकल एक जगह नारा लगवाते हैं, मैं भी सबको वो बुलवाता हूँ, आप सब कहो कि पहली तलाक अभी नहीं, बोलो पहली तलाक अभी नहीं और पहली के बाद कभी नहीं, पहली के बाद कभी नहीं। भाई ये तलाक तो बहुत खतरनाक चीज है, बहुत गुनाह की चीज है। अल्लाह ताला ने आपको बीवी दी, अच्छी तरह रहो, अच्छी जिंदगी गुजारो, मोहब्बत से जिंदगी गुजारो, इसी में हमारी भलाई है। अल्लाह ताला आज के हमारी इस जमा होने को कबूल फरमाए, कहने सुनने को कबूल फरमाए। जिन लोगों ने आज के इस जलसे के लिए मेहनत की, अल्लाह ताला इन तमाम हजरात की मेहनतों को, खिदमतों को कबूल फरमाए। आप लोग वो फार्म को बहुत जल्दी जल्दी तैयार करें और जमा करा दें। आप उसको नहीं भेज सकते, हम इंशाल्लाह उसका ईमेल करवा देंगे। हमने प्लान बनाया है कि ईमेल होने के बाद असली फार्म को हम हाथों हाथ यहाँ से दिल्ली पहुँचाएंगे, रजिस्ट्री कुरियर नहीं, हाथों हाथ हम इंशाल्लाह पहुँचाएंगे। इस खिदमत के लिए हम लोग तैयार है आपके वास्ते। किताबें भी लेकर के जाओ, घरों में पढ़ो, इंशाल्लाह उसका बहुत फायदा होगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लो, दुआ करते हैं। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ اس ملک میں صبح قیامت تک اسلام اور مسلمانوں کو ہر نوع کی ترقیات کے ساتھ دائم قائم جاری ساری فرما, हर तरह के खारिजी दाखिली फितनों और फितनों से इस्लाम और मुसलमानों की हर हमेशा हिफाजत फरमाओ, हमारे मुल्क में अमनो अमान कायम फरमाओ, ए अल्लाह आपसी लड़ाई झगड़ों से हिफाजत फरमाओ, ए अल्लाह हमको जबान को काबू में रखने की तौफीक अता फरमाओ, ए अल्लाह तलाक जैसी आपको नापसंद चीज से बचने की तौफीक अता फरमाओ, हमारे घरों को सुकून चैन रहमत बरकत वाला बना दीजिए, ऐ अल्लाह मुकम्मल इस्लामी शरीयत और खास तौर पर हमारे समाजी और खानदानी मसाइल को सीखने की, समझने की, उस पर अमल की, उसकी इशाअत की हमको तौफीक अता फरमाओ, ऐ अल्लाह हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर मांगी हमें और पूरी उम्मत को अता फरमाओ, जिन शुरूर से पना चाही ऐ अल्लाह हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाओ, ऐ अल्लाह मुसलमानों की मुकद्दस शरीयत, हमारी मुकद्दस शरीयत के तहफ्फुज के लिए जो कोशिशें हो रही है अल्लाह उसको कामयाब फरमाओ, कामयाब फरमाओ, कामयाब फरमाओ, हर नौ की शरारतों से उसकी हिफाजत फरमाओ। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तो टेलर है, दूध फट गया तो आपने टांके मरवा लेंगे, तो माने कहा बेटा ये टांके हर चीज पे थोड़े ही लगते हैं, टांके लगाने की चीज अलग होती है, दूध पे कभी टांके नहीं लगा करते। तो मैं ये कहता हूं कि ये तलाक भी कोई ऐसी चीज है कि ये कोई टांके लगाने की चीज, अगर झगड़े हो जिंदगी के अंदर और जिंदगी फटती जा रही है तो उसमें टांके लगाने के बहुत से तरीके शरीयत में मौजूद है, लेकिन हम किसी से मशवरा ही नहीं करते, और सीधा तलाक दे डालते हैं। एक मर्तबा मैं मगरिब की नमाज पढ़ के मस्जिद से निकला तो देखा कि भीड़ लगी हुई है और कोई आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा है। मैंने कहा क्या बात है, तो कहा कि मुफ्ती साहब आप मत पूछो क्या बात है, आप जल्दी से घर चले जाओ। मैंने कहा क्यों भाई, तो कहा कि वो फैमिली में फुलाने मर्द की औरत से लड़ाई हुई और वो यूं चिल्ला रहा है कि मुफ्ती साहब को लाओ, मैं अभी पूछ के अभी तलाक देता हूं। इसलिए कहा कि अच्छी बात है कि वो गुस्से में है लेकिन कह रहा है मुफ्ती साहब को ले आओ, मैं पूछ के अभी तलाक देता हूं, आप घर चले जाओ ताकि आप दिखे ही नहीं और वो तलाक देवे ही नहीं। मैंने कहा ये आदमी बहुत अच्छा आदमी है, वरना जनरल ऐसा होता है कि तलाक देने के बाद लोग मुफ्ती साहब को ढूंढने आते हैं, तलाक से पहले कोई मशवरा करने ही नहीं आता है। जब फतावा लिखने का पहला साल था तो एक दिन एक आदमी तलाक का मसला लेकर के आया। मैं दारुल उलूम हिदायतुल इस्लाम अलीपुर में, पहला साल था दारुल इफ्ता में, ढाबे लाने से पहले तो एक आदमी आया तलाक का एक मसला लेकर के, बहुत काले वाले, शादी हुई चंद दिनों में तलाक दे दी बीवी को, तीन तलाक। अब वो कहता है मुफ्ती साहब कुछ रास्ता तो करो। मैंने कहा अभी तू इतनी फिक्र करता है, तलाक देने से पहले आता तो कोई रास्ता होता, अब तो तू सारा काम करके आया तो अब तो क्या रास्ता में तलाश करो, क्या कुछ तो करो। मैंने कहा अच्छा, मुझे लगा कि ये बेचारे को कुछ तसल्ली का सामान तो होना चाहिए, तो मुफ्ती लोग बातों को कैसे पेंडिंग करने के उसमें माहिर होते हैं। तो मैंने उसको कहा कि ये तुम मुझे पूरी डिटेल लिख के दे जाओ, फिर मैं जो है आपको बुलाऊंगा। वो बेचारा बैठ गया, पूरी दोपहर उसने मस्जिद में बैठकर केस लिखा, फिर मुझे जोहर के वक्त देने आया। तो आया तो मुझे धीरे से पूछता है कि मुफ्ती साहब आपके घर के अंदर बच्चे हो तो जरा बुलाओ ना। मैंने कहा मेरी तो अभी, मेरी खुद अभी नई शादी हुई है, मेरे बच्चे बच्चे कुछ है नहीं, तुम पूछते क्यों हो। तो कहा कि नहीं, वो बच्चे के हाथ में कुछ हदिया मुझे देना था। मैंने कहा चल निकल यहां से, तू हदिये के नाम पे मुझे रिश्वत देना चाहता है कि तू मुझे इसलिए पैसे देवे कि मैं तेरे लिए शरीयत के अंदर कोई गड़बड़ करूं। हरगिज नहीं, हम लोग कोई मसला बेचा नहीं करते, हमारे यहां तो जो कानून होगा उसके मुताबिक हम लिख करके देंगे। तो लोग जब झगड़ा होता है घर में, फैमिली में कोई मसला होता है तो मशवरा नहीं करते और सीधा तलाक देने के ऊपर उतर आते। काश के मशवरा करते तो फिर झगड़े की तलाक तक नौबत नहीं आती। चौथा गुना, लोग इस्तिखारा नहीं करते, शादी से पहले पूछने आते, हम कहते भाई इस्तिखारा करो, लेकिन अगर घर में कोई मसला आ गया तो तलाक देने से पहले कोई इस्तिखारा ही नहीं करता। शादी के लिए तो खुद को अपने इस्तिखारे पर इत्मीनान नहीं, तो महल्ले के इमाम साहब को कहेंगे इमाम साहब मुझसे तो बराबर इस्तिखारा नहीं होता, आप बहुत बड़े मुत्तकी आदमी हैं, आप जरा इस्तिखारा करके दो, मौलाना साहब आप इस्तिखारा करके दो। तो वहां तो बुजुर्गों के पास इस्तिखारा करवाते, और तलाक देने से पहले अगर इस्तिखारा कर लेते तो तलाक की नौबत ही नहीं आती और जिंदगी बर्बाद ही ना होती। इसीलिए इस्तिखारा तलाक से पहले ये भी एक करने की चीज है। पांचवी चीज, जब लोग तलाक की बात करते तो देखते भी नहीं कि औरत हैज में है, मासिक है कि नहीं है, हालांकि शरीयत ने हमको तलाक देने का तरीका भी बतलाया। आप जानते हो अभी हजरत की जुबान से आप सुन रहे थे, हमारे दीन में जरूरत के वक्त तलाक कैसे देने की वो तरीका भी बतलाया। या अय्युहन नबी इजा तल्लक्तुमुन निसा फतल्लिकूहुन लिद्दतिहिन व अहसुल इद्दा। पूरा तरीका तलाक देने का वो भी अल्लाह ने कुरान में बयान किया। अब तो झगड़ा होता है तो औरत बिचारी पाक है नापाक है, हैज है नहीं है, कुछ नहीं देखते, धड़ाधड़ तलाके दे डालते। कम से कम ये सोचते कि शरीयत का कानून ये है कि मासिक हो, एमसी हो, हैज हो, उसमें तलाक नहीं दे सकते। हैज के जमाने के अंदर हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हों के बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हों ने अपनी बीवी को हैज की हालत में तलाक दे दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, हुजूर ने फरमाया कि उनको कहो ये तलाक कैंसल करे और बीवी को अपने निकाह में ले लेवे। जो तलाक हैज में दी जावे वो बहुत बुरी बात है, उसको कैंसल करने का हुक्म का, उसको फिर से निकाह में लो। हैज के जमाने में तलाक नहीं दी जाती। आपको मैं बतलाऊं, ये किस्सा इतना आगे बढ़ा कि जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफा थे उस जमाने के अंदर, जब एक मजूसी गुलाम ने, पारसी गुलाम ने, फिरोज ने हजरत उमर को फजर की नमाज में खंजर मारा, हजरत उमर जख्मी हो गए और अब उनके बाद खलीफा और अमीर कौन बनेगा, इसका मसला आया। तो लोगों ने कहा हजरत आप अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को खलीफा बना दो, उनका नाम तय कर दो। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, मेरे बेटे को हरगिज खलीफा मत बनाना, जिसको तलाक देना नहीं आता वो मुसलमानों का अमीर नहीं बन सकता। अपने बेटे के बारे में ये फरमाया हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने। आप अंदाजा लगाओ कि हैस के जमाने में औरत को तलाक देने की जल्दी करने की क्या जरूरत थी, शरीयत ने मना किया है। छठी चीज, बहुत से लोग ये समझते हैं कि तीन तलाक देना जरूरी है, उसके बगैर तो तलाक पड़ती ही नहीं है। एक तो ऐसी है, तीन तो देनी ही पड़ती है। अभी अभी जब ये मोमेंट शुरू हुई तो मैं एक जगह गया था, इसी मोमेंट के सिलसिले में काफी दूर तो मैं गया था, तो वहां के एक बहुत बड़े जिम्मेदार, जो इलाके के दावत के भी जिम्मेदार, बुजुर्गों से भी ताल्लुक रखने वाले बड़े दीनदार, वो आधे रास्ते से मेरे साथ हो गए गाड़ी में। उनके घर का तलाक का एक मसला था तो मुझे कहने लगे, मुफ्ती साहब हमारे यहाँ लड़की को एक और दो तलाक हो गई है, आज आप आए हो तो जरा मशवरा करके तीसरी भी दिलवा दो ताकि किस्सा ही पूरा हो जावे। हमने हमारी बेटी को दूसरी जगह शादी करवानी है तो इंतजार में बैठे, बेटी भी कहती है कि तीन हो जावे ने सब किस्सा पूरा हो जावे, पहले एक दो हो गई है, आप आए हो तो आप तीसरी दिलवा दो ताकि पूरा किस्सा खत्म हो जाए। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, तीसरी तलाक कोई जरूरी है दूसरा निकाह करने के लिए? एक तलाक दे देवे इद्दत पूरी हो जावे, फिर भी दूसरा निकाह तो हो सकता है, तीन तलाक जरूरी नहीं। आज लोगों ने तीन तलाक को जरूरी समझ लिया, हालांकि कान खोल के सुन लो, अपनी बीवी को तीन तलाक देना गुनाह का काम है, गुनाह का काम है। कल मैं वापी में था, इसी प्रोग्राम के सिलसिले में जब मैंने ये मसला बयान किया तो कितने लोग मजलिस के, आज हमने सुना कि तीन तलाक देना गुनाह है, सुना ही नहीं आज तक, और एक तलाक के बाद भी किस्सा खत्म हो जाता है, हमको मालूम ही नहीं। मेरे दीनी भाइयों, इसलिए हम अपील करते कि मसाइल भी सीखो, मसाइल की मजलिसें भी रखो, ये परमानेंट इलाज है। इसीलिए जो लोग ये समझते हैं कि तीन तलाक देना फर्ज है, वाजिब है, सवाब का काम है, वो बहुत बड़ी गलती में है, बहुत बड़ी गलती में है। तीन तलाक देना शरीयत के अंदर गुनाह का काम है। सातवीं चीज जिसको हमारी हुकूमत ने एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया है वो है हलाले का मसला। हलाले के अंदर भी एक हलाला लानत वाला होता है, लानत यानी अल्लाह की रहमत से दूर, डेंजर हलाला, जिसके लिए बद्दुआ है ऐसा हलाला, वो हलाला क्या होता है? अब तीन तलाक दे डाले, फिर आके किसी मुफ्ती का दिमाग चाटेंगे कि हजरत क्या करें, गुस्से में थे। मैं कहता हूं कोई मोहब्बत में थोड़ी तलाक देता है, जो भी देता है गुस्से में ही देता है ने? ये कोई कैटबरी थोड़ी ही है, ये तो गुस्से में ही दी जाती है। तो तीन तलाक दे दी, अब बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, कुछ जोड़ की शक्ल करो। तो अब जोड़ के लिए फिर जो है जबरदस्ती का रिफाइन करवाना पड़ता है, वो रिफाइन का नाम है हलाला। अब ये जो हलाला है, उस हलाले का मतलब क्या? उसी एक मजलिस में एक आदमी ने खड़े होकर सवाल किया कि भाई हजरत हलाला किसके साथ करने का वो मसला भी जरा बतला दो, और कैसी कंडीशन में करने का वो भी बतला दो। मैंने कहा हलाले का मसला सीधा साधा इतना है कि अगर तीन तलाक के बाद इद्दत गुजर गई, फिर किसी के साथ तुम निकाह करा, तो उसमें शर्त नहीं लगाने की कि एक रात में एक कलाक में उसको छुट्टी कर देना, ऐसी शर्त नहीं लगाने की। बाकायदा जैसे शादी होती है वैसी शादी करो, मेहर भी वलीमा भी सब होवे। और हो सकता है कि ये दूसरा आदमी जिसके साथ निकाह करवाया उसी के साथ दिल लग गया और जिंदगी गुजर गई, पहले के पास आने की नौबत ही नहीं आई, जरूरत ही नहीं पड़ी। ये है असल तरीका। अब अगर तुमने शर्त लगा दी कि एक रात निकाह कल तलाक दे देना, या एक कलाक का निकाह फिर तलाक दे देना, और बास जगह पर तो ऐसा होता है कि दोनों को एक रूम के अंदर भेजा और एक कलाक के बाद बाहर आंटे मारना शुरू है, बाहर निकलो जल्दी, बाहर निकलो, तलाक दो, आगे की सब प्रोसीजर पता नहीं किए। ये लानत वाला हलाला है, इसके ऊपर अल्लाह की लानत है ऐसे हलाले के ऊपर। और सुन लो, अगर दूसरा निकाह कराया और दूसरा निकाह कराने के बाद वो दूसरी शादी वाला औरत के साथ सोया नहीं, यानी बाकायदा उसने सोबत जिमा नहीं किया, तो कभी भी वो पहले शोहर के लिए हलाल नहीं होगी, हो ही नहीं सकती हलाल। और हलाल नहीं होगी तो फिर दूसरी इद्दत के बाद निकाह करेंगे तो पूरी जिंदगी जिना करने का गुनाह होगा, पूरी जिंदगी जिना का गुनाह होगा। इसीलिए भाई ये हलाले को लोगों ने खिलौना बना दिया, इसीलिए ये मसला है कि भाई ये हलाले वाला निकाह नहीं होना चाहिए। हमारी शरीयत में जो हलाला है, जो परफेक्ट हलाला जो अल्लाह ने कुरान में बयान किया, वो क्या बयान फरमाया? फइन तल्लकहा फला तहिल्लु लहू मिन बाद हत्ता तन्किह ज़ौजन ग़ैरा। पहले शोहर ने तलाक दे दी, गलती से तीन दे दी, गुनेगार है वो तीन देने वाला। इद्दत पूरी करने के बाद दूसरे मर्द से निकाह कराओ, कोई पहले से शर्त नहीं, कोई कंडीशन नहीं, बगैर शर्त के निकाह कराओ, और उसके बाद किसी वजह से दूसरे शोहर का इंतकाल हो गया, या दूसरे शोहर के साथ बनी नहीं निभी नहीं और उसने तलाक दे दी और वहां से इद्दत गुजर गई, अब ये हुआ परफेक्ट हलाला, और फिर पहले शोहर के लिए वो हलाल होगी। अब मुसलमान उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से इस्लाम बदनाम होता है। मेरे मुसलमान भाइयों, आप सब मर्द मेरे सामने बैठे हो तो मैं आप हजरात को चंद बातें अर्ज कर, इन बातों का लिहाज रखो तो इंशाअल्लाह तलाक की नौबत ही नहीं आएगी।